एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने अमेरिका के इतिहास को देखने का नजरिया ही आप कह सकते हैं बदल दिया। हॉवर्ड ज़िन की अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
हाँ, और ये किताब जितनी मशहूर है उतनी ही विवादास्पद भी रही है ना?
बिल्कुल,
इस पर बहसें बहुत हुई हैं।
और ये आज भी उतनी जरूरी लगती है क्योंकि ये सवाल तो हमेशा रहता है कि इतिहास किसका है, कौन सुनाता है कहानी, किसकी कहानी सुनी जाती है। ज़िन की किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो हमने स्कूलों में पढ़ा क्या वही सच है, या फिर मतलब कहानी कुछ और है।
सही कहा, ये सीधे सीधे उस सोच को चुनौती देती है जहां इतिहास बस बड़े लोगों, नेताओं, जनरल, उद्योगपतियों के आसपास घूमता है। ज़िन ने बिल्कुल पलट दिया इसको।
हाँ,
कैसे?
उन्होंने उन लोगों की आवाज को सामने रखा जिन्हें अक्सर मतलब किनारे कर दिया जाता है, जैसे अमेरिका के मूल निवासी थे या अफ्रीका से लाए गए गुलाम, फैक्ट्री के मजदूर, औरतें, अप्रवासी।
अच्छा, तो चलिए पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात करें। हॉवर्ड ज़िन ये सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे जैसा आपने कहा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कोलंबिया से पीएचडी थी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन उनकी पहचान उससे कहीं ज्यादा थी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक एक्टिविस्ट।
और उनके अपने अनुभव उनकी सोच में दिखते हैं ना?
बहुत ज्यादा। वो ब्रुकलिन में पले बढ़े, एक मजदूर क्लास यहूदी अप्रवासी परिवार में, फिर दूसरे विश्व युद्ध में थे, बम वर्षक पायलट, लेकिन वहां जो देखा आम लोगों पर बमबारी, उससे उनका मोह भंग हो गया।
ओह,
और वो पक्के युद्ध विरोधी बन गए। फिर नागरिक अधिकार आंदोलन में वो बहुत सक्रिय रहे। 60 के दशक में स्पेलमैन कॉलेज में पढ़ाया, जो अश्वेत महिलाओं का कॉलेज है।
हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में।
और दक्षिण में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। तो ये सब चीजें, उनकी मजदूर पृष्ठभूमि, युद्ध का अनुभव, एक्टिविज्म, ये सब उनके इतिहास लिखने के तरीके में झलकता है।
बिल्कुल, यही मेल शायद उन्हें खास बनाता है किताबी ज्ञान और जमीनी संघर्ष का।
हाँ, और वो मानते थे कि इतिहासकार तटस्थ हो ही नहीं सकता। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं शक्तिहीनों का पक्ष ले रहा हूँ।
तो ये किताब ए पीपल्स हिस्ट्री, ये असल में है क्या, अगर सरल शब्दों में कहें तो?
सरल शब्दों में ये अमेरिका का इतिहास है, कोलंबस के आने से लेकर मतलब 1492 से लेकर लगभग आज तक। लेकिन ये वो वाला इतिहास नहीं है जो आम तौर पर पढ़ाया जाता है।
तो फिर कौन सा इतिहास है?
ये उन कहानियों, उन संघर्षों का इतिहास है जिन्हें अक्सर बड़ी किताबों में या तो एक लाइन में निपटा देते हैं या बिल्कुल ही गायब कर देते हैं।
अच्छा, और इसका मुख्य विचार क्या है, मतलब ज़िन कहना क्या चाहते हैं?
तो उनका मेन पॉइंट ये है कि जो इतिहास हम आम तौर पर पढ़ते हैं वो ऊपर वालों का है, नेताओं का, अमीरों का, विजेताओं का। और ये कहानी अक्सर ऐसे सुनाई जाती है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा था, देश तरक्की कर रहा था, सीधी लाइन में।
हाँ, एक तरह की प्रोग्रेस नैरेटिव।
बिल्कुल, लेकिन ज़िन कहते हैं कि ये तस्वीर झूठी है। असलियत में अमेरिकी इतिहास भरा पड़ा है वर्ग संघर्ष से, अमीर और गरीब की लड़ाई से, नस्लीय दमन से, लिंग के आधार पर असमानता से।
तो उनका सवाल ये है कि अगर हम इतिहास को नीचे से देखें।
हाँ बिल्कुल, अगर हम इतिहास को उन लोगों की नज़र से देखें जिन पर जुल्म हुआ, जिन्होंने विरोध किया, जो हाशिए पर थे, तो अमेरिका की कहानी कैसे दिखेगी? और वो कहानी बहुत अलग और अक्सर परेशान करने वाली है।
और इसका मकसद सिर्फ पुरानी बातें जानना नहीं है, जाहिर है।
नहीं नहीं, ज़िन चाहते थे कि लोग जाने कि आम लोगों ने पहले भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, लड़े हैं, ये भूले हुए आंदोलन आज भी प्रेरणा दे सकते हैं। किताब में सब कुछ है, कोलंबस, मूल निवासियों का सफाया, गुलामी, क्रांति, मजदूर आंदोलन, युद्ध, नागरिक अधिकार, आज तक, लेकिन हमेशा नीचे वालों के नजरिए से।
चलिए कुछ हिस्सों में थोड़ा और अंदर चलते हैं, जैसे शुरुआत कोलंबस से। हम तो उन्हें महान खोजकर्ता मानते आए हैं, ज़िन क्या कहते हैं?
ज़िन बिल्कुल उल्टा कहते हैं, वो उन्हें एक हिंसक हमलावर की तरह देखते हैं जिनके आने से मूल निवासियों पर जुल्म और कत्लेआम का एक भयानक दौर शुरू हुआ। वो बताते हैं कि कैसे यूरोपियन आए सोने और जमीन के लालच में और अरावाक जैसे शांतिप्रिय समुदायों को लगभग मिटा दिया।
बाप रे, ये तो बिल्कुल अलग बात है। और वो अपनी बात कैसे रखते हैं, मतलब सबूत क्या देते हैं?
वो उसी जमाने के लोगों के लिखे दस्तावेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक स्पैनिश पादरी थे, बार्टोलोमे डे लास कासास, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और लिखा। जिन दिखाते हैं कि अमेरिका में बस्तियां बसाने का पहला मकसद ही आर्थिक शोषण था। पहले इंग्लैंड से गरीब लोग आए, बंधुआ मजदूर बने, फिर मुनाफा और बढ़ाने के लिए अफ्रीका से लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया।
ये तो शुरुआत हुई, फिर आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी क्रांति और संविधान, इसे तो आजादी की महान लड़ाई माना जाता है, जिनका क्या कहना है?
यहां भी उनका नजरिया बहुत अलग है। वो कहते हैं कि क्रांति मुख्य रूप से अमीर जमींदारों और व्यापारियों ने अपने फायदे के लिए की। आम लोगों में भी गुस्सा था, स्थानीय अमीरों के खिलाफ भी, लेकिन उस गुस्से को बड़ी चालाकी से सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ मोड़ दिया गया।
अच्छा, तो नतीजा क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ कि आजादी तो मिल गई, लेकिन गुलामी चलती रही। समाज में अमीरी गरीबी का जो फर्क था वो भी वैसा ही बना रहा।
और संविधान, जिसे हम लोकतंत्र का प्रतीक मानते हैं,
जिन उसे भी आलोचना की नजर से देखते हैं। वो तर्क देते हैं कि संविधान बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया कि अमीरों के हित सुरक्षित रहें। मतलब गुलामों के मालिक, जमीन के सट्टेबाज, बड़े व्यापारी, खासकर उनकी संपत्ति।
तो मतलब संविधान में ऐसी चीजें थीं जिससे विद्रोह दबाया जा सके।
हाँ, जैसे शेज रेबेलियन हुआ था, गरीब किसानों का विद्रोह। संविधान ने केंद्र सरकार को इतनी ताकत दी कि ऐसे विद्रोह कुचले जा सकें। तो लोकतंत्र के साथ साथ संपत्ति की सुरक्षा, वो भी एक बड़ा मकसद था। जिन ये भी दिखाते हैं कि कैसे नस्लवाद को जानबूझकर इस्तेमाल किया गया।
इस्तेमाल किया गया कैसे?
गरीब, गोरे और अश्वेत मजदूरों को आपस में बांटने के लिए, ताकि वो मिलकर अमीरों के लिए खतरा न बन जाएं। जिन कहते हैं कि ये सोचना कि नस्लवाद बस होता है, ये गलत है। इसे बनाया गया, इस्तेमाल किया गया।
ये तो बहुत सोचने वाली बात है। फिर जिन महिलाओं, मूल अमेरिकियों और अमेरिका के फैलाव पर आते हैं, वहां क्या अलग दिखाते हैं वो?
महिलाओं के बारे में वो सिर्फ उनके दमन की बात नहीं करते, बल्कि उनके शुरुआती प्रतिरोध को भी सामने लाते हैं। वो कहानियां जो अक्सर छूट जाती हैं, और अमेरिका का पश्चिम की तरफ फैलना,
हाँ, जिसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा जाता था।
हाँ, उसे वो किसी वीर गाथा की तरह नहीं देखते हैं। वो उसे मूल अमेरिकी राष्ट्रों को उनकी जमीनों से हटाने और उनके सफाए की एक सोची समझी क्रूर नीति की तरह दिखाते हैं, जैसे ट्रेल ऑफ टीयर्स का जिक्र करते हैं।
हाँ, आंसुओं का रास्ता,
जब हजारों चिरोकी लोगों को उनकी जमीन से निकालकर पैदल हजारों मील हांका गया। कई लोग रास्ते में ही मर गए। जिन कहते हैं ये कोई हादसा नहीं था, ये जानबूझकर किया गया सफाया था।
और मेक्सिको के साथ युद्ध,
उसे जिन एक साम्राज्यवादी लूट मानते हैं, ताकि गुलामी वाले राज्यों का इलाका बढ़ाया जा सके। फिर आता है गृह युद्ध। हम सुनते हैं कि यह गुलामी खत्म करने के लिए लड़ा गया।
हाँ, लिंकन ने गुलामी खत्म की।
हाँ, लेकिन जिन यहां भी एक ज्यादा पेचीदा तस्वीर पेश करते हैं। वो मानते हैं कि उत्तरी राज्यों के नेताओं का मुख्य मकसद संघ को बचाना था, अपना औद्योगिक दबदबा कायम रखना था। गुलामी के खिलाफ कोई गहरा नैतिक विरोध वो शायद उतना बड़ा कारण नहीं था जितना बताया जाता है।
तो गुलामी खत्म करने का ऐलान, इमैन्सिपेशन प्रोक्लेमेशन,
जिन उसे एक रणनीतिक फैसला मानते हैं युद्ध जीतने में मदद के लिए। और सबसे जरूरी बात, वो जोर देते हैं कि गुलामों ने अपनी आजादी काफी हद तक खुद हासिल की।
कैसे?
खेतों से भागकर, उत्तरी सेना में शामिल होकर। उन्हें किसी ने प्लेट में रखकर आजादी नहीं दी, उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया।
गृह युद्ध के बाद का दौर आता है, गिल्डेड एज, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी। जिन उसे कैसे देखते हैं?
जिन उसे दूसरा गृह युद्ध कहते हैं।
दूसरा गृह युद्ध?
हाँ, मतलब अमीर उद्योगपतियों और गरीब मजदूरों के बीच का भयानक संघर्ष। वो 1877 की रेल हड़ताल का जिक्र करते हैं, शिकागो का है मार्केट मामला।
हाँ, जहां मजदूर नेताओं को फांसी दे दी गई थी।
बिल्कुल, उन पर बम फेंकने का झूठा आरोप लगाकर। जीन दिखाते हैं कि कैसे सरकार और कंपनियों की प्राइवेट सेनाएं मिलकर मजदूर आंदोलनों को कुचलती थीं।
और इसी समय अमेरिका बाहर भी दखल देने लगा, स्पैनिश अमेरिकन युद्ध।
हाँ, जीन का तर्क है कि साम्राज्यवाद का इस्तेमाल देश के अंदर चल रहे वर्ग संघर्ष से ध्यान भटकाने के लिए किया गया, और अमेरिकी कंपनियों के लिए नए बाजार खोलने के लिए। लेकिन इसी दौर में जबरदस्त विरोध भी हुआ।
किस तरह का विरोध?
पॉपुलिस्ट आंदोलन थे, यूजीन डिप्स की सोशलिस्ट पार्टी थी, और एक बहुत रेडिकल मजदूर संगठन था, IWW, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सब कॉरपोरेट ताकत को सीधी चुनौती दे रही थी।
पर फिर पहला विश्व युद्ध आ गया।
हाँ, और जिन दिखाते हैं कि कैसे युद्ध का बहाना बनाकर इस विरोध को कुचला गया। देशभक्ति के नाम पर जासूसी और राजद्रोह कानून लाए गए, युद्ध का विरोध करने वालों को समाजवादियों को जेल में डाल दिया गया। जिन के लिए ये युद्ध भी अमीरों के फायदे के लिए गरीबों की लड़ाई थी।
किताब के आखिरी हिस्सों में जिन दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज तक आते हैं, क्या वो दूसरे विश्व युद्ध की भी आलोचना करते हैं, जिसे अक्सर अच्छा युद्ध कहा जाता है?
हाँ, बिल्कुल, वो सवाल उठाते हैं, जैसे अमेरिका में ही जापानी मूल के नागरिकों को कैंपों में बंद कर दिया गया था, सेना में अश्वेत सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, जर्मनी और जापान के शहरों पर आम नागरिकों पर जो बमबारी हुई, ड्रेसडन, हिरोशिमा, नागासाकी, उस पर भी सवाल उठाते हैं।
युद्ध के बाद का क्या?
युद्ध के बाद जिन अमेरिका में उठे बड़े सामाजिक आंदोलनों पर फोकस करते हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन, ब्लैक पावर, वियतनाम युद्ध का जबरदस्त विरोध, नारीवादी आंदोलन, मूल निवासियों के अधिकार का आंदोलन, जेलों में विद्रोह, वो इसे महान उथल पुथल का दौर कहते हैं। ऐसा दौर जिसने सचमुच व्यवस्था को हिला दिया था।
और व्यवस्था ने इसका जवाब कैसे दिया?
जिन के मुताबिक दो तरीकों से। एक तो सीधा दमन, जैसे ब्लैक पैंथर नेताओं की हत्या, झूठे मुकदमे, और दूसरा तरीका था जिसे वो कोऑप्शन कहते हैं।
कोऑप्शन मतलब?
मतलब आंदोलन की कुछ मांगे मान लेना, थोड़े सुधार कर देना, ताकि आंदोलन की जो रेडिकल धार है वो कुंद पड़ जाए और वो व्यवस्था के लिए खतरा न रहे। जिन दिखाते हैं कि बाद के राष्ट्रपतियों के दौर में भी, कार्टर से लेके बुश तक, नीतियां ज्यादातर बड़ी कंपनियों और सेना के हक में ही रहीं।
वो आतंक पर युद्ध की भी आलोचना करते हैं।
उन्होंने गार्ड्स का विद्रोह जैसी भी कोई बात कही है। ये क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प विचार है। जिन कहते हैं कि समाज में जो मध्यम वर्ग होता है, टीचर, डॉक्टर, छोटे मैनेजर, वो एक तरह से व्यवस्था के रक्षक होते हैं।
अच्छा।
अगर कभी ये वर्ग आर्थिक रूप से बहुत असुरक्षित हो जाए तो हो सकता है कि वो बदलाव के लिए निचले वर्गों के साथ मिल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा।
तो अगर हम पूरी किताब का निचोड़ निकालने की कोशिश करें तो मुख्य बातें क्या हैं, मुख्य संदेश?
सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश तो यही है, इतिहास को नीचे से देखो, ऊपर से नहीं, उन लोगों की नजर से जिनकी कहानियां दबा दी जाती हैं। दूसरा, वर्ग संघर्ष। अमीर और गरीब के बीच का तनाव अमेरिकी इतिहास का एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे अक्सर राष्ट्रीय एकता के नाम पर छुपाया जाता है।
और वो अमेरिकी अपवादवाद वाली बात कि अमेरिका सबसे अलग, सबसे महान है,
जिन उसे एक मिथक मानते हैं। वो दिखाते हैं कि अमेरिका के इतिहास में भी उतना ही शोषण, हिंसा और साम्राज्यवाद रहा है जितना शायद बाकी दुनिया में। कोई गुलाबी तस्वीर नहीं है।
और क्या चीजें उभर कर आती हैं?
एक बहुत जरूरी बात है, प्रतिरोध की ताकत। ये किताब सिर्फ जुल्म की कहानी नहीं है, ये जुल्म के खिलाफ आम लोगों के लगातार संघर्ष की कहानी भी है।
हाँ, जैसे गुलामों के विद्रोह, हड़तालें,
बिल्कुल, औरतों के वोट के अधिकार की लड़ाई, शांति आंदोलन। ये दिखाता है कि लोग चुपचाप सब सहते नहीं रहे, ये उम्मीद जगाता है।
और सरकार की भूमिका पर भी उनका नजरिया काफी साफ है।
हाँ, वो अक्सर दिखाते हैं कि सरकार ने ज्यादातर ताकतवर लोगों के हितों की ही रक्षा की है, और कैसे इतिहास लिखते वक्त भी चुनिंदा तरीके से चीजें याद रखी जाती हैं, जो बातें सत्ता पर सवाल उठाती हैं उन्हें भुला दिया जाता है। जिन ये भी दिखाते हैं कि कैसे व्यवस्था अक्सर विरोध को नरम करने या उसे अपने में मिलाने में कामयाब हो जाती है।
किताब में कुछ ऐसी लाइनें या विचार हैं जो मतलब याद रह जाते हैं?
हाँ, कई हैं। जैसे जिन कहते हैं, उत्पीड़ित लोगों की याददाश्त एक ऐसी चीज है जिसे छीना नहीं जा सकता। विद्रोह हमेशा सतह से बस एक इंच नीचे होता है। मतलब इतिहास याद रखना ही अपने आप में एक तरह का प्रतिरोध है।
वाह।
या फिर ये तीखी बात कि निर्दोष लोगों की हत्या के शर्म को ढकने के लिए कोई भी झंडा काफी बड़ा नहीं है। ये देशभक्ति के नाम पर होने वाली हिंसा पर सीधा सवाल है।
ये तो बहुत सोचने वाली बात है।
और आम लोगों की ताकत के बारे में?
हाँ, उनका ये विचार बहुत प्रेरणा देता है।
दुनिया को बदलने के लिए हमें कोई बहुत बड़े वीरतापूर्ण काम करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे काम जब लाखों लोग मिलकर करते हैं तो दुनिया बदल सकते हैं। ये रोजमर्रा के छोटे प्रतिरोधों और सामूहिक एक्शन की अहमियत बताता है।
और एक और बात जो आपने बताई थी, वो नागरिक आज्ञाकारिता वाली।
अरे हाँ, वो कहते हैं, इस दुनिया में असली समस्या सविनय अवज्ञा नहीं, बल्कि नागरिक आज्ञाकारिता है।
मतलब असली दिक्कत ये नहीं कि लोग कानून तोड़ते हैं,
बल्कि ये है कि लोग अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को चुपचाप मानते रहते हैं।
कमाल है। और ये भी कि गरीबों की पुकार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, लेकिन अगर आप इसे नहीं सुनते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि न्याय क्या है। हाशिए की आवाजों को सुनना कितना जरूरी है।
हाँ, और वो मशहूर लाइन, अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आप ऐसे हैं जैसे कल ही पैदा हुए हो, और फिर कोई भी आपको कुछ भी बता सकता है, ज्ञान ही ताकत है।
और लोकतंत्र के लिए विरोध का महत्व।
उनका कहना था, कानून से परे जाकर विरोध करना लोकतंत्र से भटकाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए नितांत आवश्यक है।
ये सब विचार तो बहुत दमदार हैं, पर सवाल ये है कि हम, मतलब आम लोग, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों का क्या करें, कैसे लागू करें?
एक चीज तो ये कि हम जो पढ़ते सुनते हैं, जो खबरें आती हैं, नेताओं के भाषण होते हैं, उन पर सवाल उठाना सीखें। जिन की तरह पूछें, इस कहानी से किसका फायदा हो रहा है, किसकी आवाज गायब है, क्या कोई और नजरिया भी है, मतलब क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी।
ये तो बहुत जरूरी है आजकल, और ये हमें आज के सामाजिक आंदोलनों को समझने में भी मदद कर सकता है ना। जैसे हम अपने देश में भी देखते हैं किसानों के, मजदूरों के या दूसरे हाशिए के समुदायों के आंदोलन, जिनका नज़रिया हमें इन्हें एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष के हिस्से की तरह देखने में मदद कर सकता है।
बिल्कुल, और ये देशभक्ति का मतलब पर भी सोचने को मजबूर करता है। क्या देशभक्ति का मतलब है सरकार की हर बात मान लेना, या फिर अपने देश के लोगों, खासकर कमजोर तबकों के साथ खड़ा होना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना? जिन शायद दूसरे वाले नजरिए के साथ थे,
और शायद ये हमें नागरिक के तौर पर ज्यादा जागरूक बना सकता है, सतही समस्याओं से आगे बढ़कर उनके पीछे की व्यवस्थागत वजहों को समझने की कोशिश करना और उन कोशिशों का साथ देना जो जड़ पर चोट करती हों।
और मुझे लगता है व्यक्तिगत स्तर पर भी ये किताब ताकत देती है। ये याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बड़े लोग नहीं बनाते, हम जैसे आम लोगों के काम भी जब मिलकर होते हैं तो इतिहास बदल सकते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, निचोड़ क्या है?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास कभी भी तटस्थ नहीं होता। हर इतिहास एक नजरिए से लिखा जाता है और अक्सर वो नजरिया ताकतवर लोगों का होता है। इसलिए जो सरकारी या मुख्य धारा की कहानी है, उस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। हमेशा पूछना चाहिए कि दूसरा पहलू क्या है।
हाँ, और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा असर कर गई वो है आम लोगों की संघर्ष करने की क्षमता। जिन दिखाते हैं कि जुल्म चाहे कितना भी हो, लोग उम्मीद नहीं छोड़ते, लड़ने के तरीके ढूंढते हैं। ये किताब सिर्फ अतीत का विश्लेषण नहीं है, ये भविष्य के लिए एक तरह से एक्शन का बुलावा भी है। ये याद दिलाती है कि बदलाव मुमकिन है, बस उसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है।
और शायद सोचने के लिए एक आखिरी सवाल ये छोड़ा जा सकता है कि अगर जिन आज भारत का लोगों का इतिहास लिखते, तो वो किन आवाजों को, किन संघर्षों को सामने लाते जिन्हें हमारा मुख्य धारा का इतिहास अक्सर नजरअंदाज कर देता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।